پانچویں پیج میں سب کو یہ کتاب مل گیا نا, اپنے اپنے کتاب اوپر کرو آپ, ابھی تک پرانا کتاب ہے اور یہ بھی پرانا, ہاں یہ انگلش ہے, ٹھیک ہے دکھاؤ سب اپنا اپنا دکھاؤ, شکان سے پرانا ہے انگلش, انگلش وہ بھی پرانا ہے نا, وہ بھی پرانا ہے, تو آپ نیا والا لے لو, یہ والا لے لو, تاکہ سب جو بھی ہم پڑھتے ہیں وہ سب ایک ہی ہونا چاہیے, تھوڑے بہت انتر ہیں, زیادہ بڑے انتر تو نہیں ہے لیکن چھوٹے موٹے ہیں, ہاں تو آپ سب کو دے دو گے, جو چار پانچ ہیں سب کو ایک ایک دے دو پرانا, تو یہی لینا ہے سب کو, ٹھیک ہے. تو اس میں پانچواں پیج کہ سرو پرتھم منشیہ کو اپنی وانی پر سنیم رکھنا چاہیے, تو ابھی کون پڑھیں گے, پڑھو گے شری گوکلانند, تھوڑا زور سے پڑھنا, ہاں ہاں. تو ابھی شڑ ویگوں میں سے جو پہلا ویگ ہے واچو ویگم, اس کی چرچا ہونے جا رہی ہے, ٹھیک ہے پڑھو. ٹھیک ہے, تو یہاں تک واچو ویگم کی چرچا. تو یہاں کون سے مہتوپورن باتیں بتائی ہیں پربھوپاد جی نے, ابھی بتائیے آپ کو ایک ایک کر کے, شروعات سے لے کر کون بتائیں گے ایک ایک کر کے, آپ جلدی بتائیے سب, ہاں اتنا ٹائم مت لیجیے بتانے کے لیے, ہاں ہاں اپنے واچا کو نینترت کرنے کی بات کرتے ہیں اور چرچا کیسے آگے بڑھاتے ہیں. ہاں ہر ایک ویکتی بس موقع دیکھ رہا ہے کب بات کروں, اور پربھوپاد کیا بولتے ہیں, ہر ایک ویکتی جس کے پاس جیب ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے, بولنا چاہتا ہے, اور آگے کیا بولتے ہیں؟ ہاں بکواس بولیں گے. یدی ہم کرشن بھاو بولنے کی پرورتی تو ہے, یدی کرشن بھاونا کی باتیں نہیں کریں گے تو بکواس بولیں گے, ہے نا. اور آگے ہاں تو یہ ادھارن مینڈک سانپ کا ہے. کیسے اور کیا سوچتا ہے مینڈک جب ایسے وہ ٹراتا ہے تو؟ اپنے من میں ہی کیا سوچتا ہوگا, ہاں میں بہت سندر گا رہا ہوں. بھلے یہاں پربھوپاد جی اسپشٹ ایسے نہیں بتا رہے ہیں, لیکن مینڈک جب کرتا ہے ٹراتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں بہت سندر گیت گا رہا ہوں, میری وانی کتنی مدھر ہے. لیکن اس کا پرینام کیا ہوتا ہے؟ سانپ آ جاتا ہے اور آکرشت ہو جاتا ہے اس کے ٹرانے سے اور اس کو نگل لیتا ہے, کھا لیتا ہے. تو ٹھیک اسی پرکار سے کیا ہوتا ہے؟ تو بھوتک وادی لوگ اور مایا وادی لوگ ان کی باتیں مینڈک کی طرح ہوتی ہیں اور مرتیو کو آمنترت کرتے ہیں. تو سانپ کیا ہے؟ نہیں کال پر مرت سانپ مرتیو ہے نا. تو مرتیو کے روپ میں سانپ آ کر نگل لیتا ہے ان کو. ہاں پھٹ جاتا ہے. اپدیش اپاخیان میں ہو سکتا ہے. تو پھر آگے کیا بتاتے ہیں؟ ہاں سیمت وانی ایسا مایاوادی لوگ سوچتے ہیں, لیکن یہ اپنے آپ میں سمرتھ ہے کیا وانی کے ویگ کو سیمت کرنے کے لیے, نینترت کرنے کے لیے؟ ہاں پربھوپاد جی کیا بول رہے ہیں؟ نہیں اس کے پہلے یہ جو مون رکھنے کی وتی ہے یا پدھتی ہے وہ کس حد تک لابھدائک ہوگا؟ باہر روپ سے اور لمبے سمے تک, کم سمے تک, کب تک؟ کیا بولتے ہیں پربھوپاد جی؟ کچھ سمے تک. کیا ہوتا ہے؟ ہاں کچھ سمے تک لابھدائک پرتیت ہو سکتا ہے, پرنتو انتتہ یہ لابھدائک نہیں ہے, یہ اسفل ہوگا. تو مون ورت جو ہوتا ہے وہ ایک باہیہ پرکریا ہے اور اس سے واستو میں واچو ویگ کا نینترن نہیں ہوتا ہے. تھوڑے سمے کے لیے ہو سکتا ہے لگے کہ یہ لابھدائک ہوگا, پرنتو انت میں اسفل ہو جائے گا. تو پھر آگے کیا بتاتے ہیں پربھوپاد؟ تو جب ہم کرشن کتھا کرتے ہیں, اور کرشن کتھا مطلب کیا ہے ابھی آپ نے بتایا, ہاں کیا زور سے بتاؤ, نام گن روپ لیلا آدی بھگوان کی ان کے بارے میں چرچا کرنا یہ کرشن کتھا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے ویکتی جو کرشن کتھا کرتا ہے وہ سانپ سے بچ جاتا ہے, مرتا نہیں ہے, بھکت مرتا نہیں ہے. ہاں بھوتک درشتی سے مرتیو ہو جائے پرنتو وہ شاشوت جیون کی اور آگے بڑھتا ہے. تو اس کا سار یہاں پہ رکھا ہے اس چارٹ میں, کیول اتنا ہے کہ مون ورت کے بارے میں یہاں نہیں ہے تو اس کی چرچا بھی ہونی چاہیے. یہ ہم ایسے کر سکتے ہیں. लाभदायक प्रतीत होगा, अंत में इसका लाभ नहीं पाया जाएगा, है ना. तो भौतिक बातें करना ये असंयमित वाणी का एक उदाहरण है, और मौन व्रत देखा जाए तो वो भी असंयमित वाणी का ही लक्षण है, क्योंकि अधिक समय तक ये नियंत्रण में नहीं रख पाएगा वाचो वेग को. और संयमित वाणी, अरे संयमित वाणी में मायावादी कैसे आ गया यहां पर? ऐसे था चार्ट? भौतिक बातें दो प्रकार की होती हैं. भौतिक बातें हैं जो भौतिक बातें और मायावादी. यहाँ नीचे होना चाहिए था, ये गलत कर दिया इसमें चार्ट में. ये
आयुर्वेदियों की बातें और मौन व्रत, तीन प्रकार के असंयमित वाणी और एक प्रकार का संयमित वाणी क्या है?
क्योंकि प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं ना कि मौन व्रत वो लोग इसको वाणी को वश में करने के लिए मौन व्रत धारण करते हैं, तो है एक प्रकार की पद्धति मौन व्रत वाणी को संयम में रखने के लिए, परंतु अंततः निष्फल होता है, ये अपूर्ण है। तो वाणी दो प्रकार की होती है, असंयमित वाणी का वेग, असंयमित वाणी और संयमित वाणी। असंयमित वाणी में भौतिक बातें और मायावादियों की बातें, ठीक है। और इसके लिए उदाहरण है मेंढक और सांप। संयमित वाणी में दो प्रकार हैं, मौन व्रत और कृष्ण कथा। तो मौन व्रत अंततः निष्फल होता है, ये अपूर्ण है, परंतु कृष्ण कथा परिपूर्ण है। ये केवल भक्त करते हैं, भक्त जो होते हैं वाणी का वास्तविक संयम करते हैं। मौन व्रत से ये संभव नहीं होता है। तो बकवास करने से अच्छा ये है कि मौन व्रत रखें। मौन व्रत रखने से अच्छा है कृष्ण कथा बोले, ठीक है ना। तो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण बात है ना, भक्तों के लिए। यदि हमें कुछ लाभदायक बोलने के लिए नहीं है तो फिर नहीं बोलना चाहिए। तो निलेश वो चार्ट में भी ऐसे बदली कर देना जैसे यहाँ किया है ना, ऐसे हो सकता है पहले। हाँ, कुछ टाइपिंग करते समय उन्होंने इसमें ऐसे लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, तो वाचो वेगम की चर्चा करने के बाद अब प्रभुपाद जी चर्चा करने वाले हैं मनोवेगम। कौन पढ़ेंगे? श्रीकांत सेन पढ़ोगे? थोड़ा जोर से पढ़ो। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात। उसको घुमा लेंगे। मनसः वेगम, मन या तो माया में रह सकता है जो कि अंधकार के समान है, या वो कृष्ण में रह सकता है जो कि सूर्य के समान है। जो जब माया में मन केंद्रित होता है या तो भौतिक विचार होते हैं या वो अपने विचारों का निषेध करने का प्रयास करते हैं, विचारों को ही शून्य बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि मन अनियंत्रित होता है। तो मन को शून्य करने की पद्धति जो है या प्रयास जो है, ये भी एक माया का ही स्वरूप है, क्योंकि ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्या बताते हैं प्रभुपाद जी? मन में शून्य की सृष्टि करने का प्रयास करना कृत्रिम विधि है। कृत्रिम विधि अर्थात स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि जीव का स्वभाव ऐसे शून्य होना नहीं है। जीव का स्वभाव क्या है? कृष्ण की सेवा करना है ना। जीव सक्रिय है स्वभाव से, जीव निष्क्रिय नहीं है। जीव के विचार होते हैं, निर्विचार नहीं हो सकता जीव। यह शून्य टिक नहीं सकता। तो ठीक किसी प्रकार से जैसे वाणी के वेग के लिए तीन प्रकार थे, एक तो भौतिक और मायावादियों की बातें, दूसरे मौन व्रत और तीसरा कृष्ण कथा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी भौतिक विचार, शून्य और कृष्ण का चिंतन। तो शून्य यहाँ मतलब वो जैसे वाचो वेगम में मौन व्रत के समान है, आप समझ रहे हैं ना, एक कृत्रिम अवस्था। निषेध करने का, कृत्रिम रूप से निषेध करने का प्रयास करते हैं, वो संभव नहीं है। पहला क्या है, गलत दिशा में ले जाना। वाणी को कैसे गलत दिशा में ले जा सकता है? भौतिक बातें करके, मायावादी बातें करके। कृत्रिम रूप से संयमित कैसे किया जा सकता है? मौन व्रत रख के, और जो सच, जो वास्तविक जो संयम है वाणी का, वो कैसे हो सकता है? कृष्ण कथा करके। ठीक उसी प्रकार से मन के लिए जो दुरुपयोग है मन का, वो है भौतिक विचार करना। जो कृत्रिम अवस्था है मन को संयम में करने का, वो है मन को शून्य करने का प्रयास करना। और जो स्वाभाविक पद्धति है मन को वश में करने के लिए, वो है कृष्ण के ऊपर चिंतन करना। ठीक है हा? अभी कौन इसका सार बताएंगे? भद्रसेन प्रभु, मन मनोवेग का ये जो अभी परिच्छेद पढ़ा, उसका सार। तो शून्य के ऊपर जो विचार होता है वो किस प्रकार का विचार है? लेकिन वो स्वाभाविक है कि नहीं है? कृत्रिम है। और इसीलिए कितने समय तक वो रहेगा? कुछ समय तक, ज्यादा टिकेगा नहीं, क्योंकि वो कृत्रिम है। तो तीन तरह की चीजें हैं, दुरुपयोग, कृत्रिम और सदुपयोग, है ना? तो दुरुपयोग वाणी का कैसे किया जा सकता है गोविंद कुंड? वाणी का दुरुपयोग कैसे होता है? दुरुपयोग भौतिक बातें करके, और क्या करके? नहीं, प्रजल भौतिक बातें और मायावादी बातें करके। और वाणी का कृत्रिम रूप से संयम करने की पद्धति कौन सी है? कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल, कृत्रिम, मौन, मौन व्रत धारण करना। तो दुरुपयोग करना है भौतिक बातें करना, मायावादी बातें करना, कृत्रिम रूप से उपयोग करने का मतलब है मौन व्रत धारण करना और सदुपयोग करना, भगवान के बारे में बोलना, कृष्ण कथा करना। ठीक उसी प्रकार से मन के बारे में, मन का दुरुपयोग क्या है निलेश? माया में अर्थात भौतिक विचारों में रहना। मन की कृत्रिम अवस्था क्या है तब श्लोक प्रभु? शून्य के ऊपर विचार करना या विचारों को शून्य बनाने का प्रयास करना। और मन का सदुपयोग क्या है? कृष्ण का स्मरण करना। तो ये तीन श्रेणियां हैं, ठीक है? तो ये हो गया मन का वेग। तो कौन सी उपमा यहां दी गई है चैतन्य चरितामृत से? कृष्ण किनके समान है? सूर्य के समान, और माया अंधकार के समान है। तो हाँ, तो जहाँ कृष्ण है वहाँ माया का अधिकार नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है?
जहाँ पे कृष्ण होते हैं वहाँ पे माया नहीं होती, मतलब कृष्ण सूर्य के समान है तो माया अंधकार के समान है। जहाँ भी सूर्य होते हैं वहाँ पे अंधकार नहीं होता। कृष्ण जहाँ सूर्य होते वहाँ माया नहीं होती।
तो इस मन के वेग के बारे में इसका क्या, क्यों ऐसे बोला गया है यहाँ पे? मतलब क्या मन के वाणी से इसका संबंध लगाऊं? नहीं, हाँ ठीक है, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि जो व्यक्ति कृष्ण का विचार कर रहा है उसके मन में माया का प्रवेश नहीं हो सकता है। बस इतना ही है कि नहीं? हाँ? तो ये है मनः वेग। तो अभी कौन पढ़ेंगे आगे? क्रोध वेग कौन पढ़ेंगे? प्रेमदीप पढ़ोगे? नहीं, ठीक है। और कौन पढ़ेगा? अनंत पद्मनाभ प्रभु। क्रोध वेगम हरे कृष्णा। अच्छी बात। तो अभी ये तीन श्रेणियां हमने बताई है ना, दुरुपयोग, कृत्रिम अवस्था, सदुपयोग। ठीक है। तो अभी क्रोध वेग के बारे में इन तीन दृष्टिकोण से कौन बताएंगे? मधुकांत प्रभु, जैसे वाणी वेग और मनोवेग, इसके बारे में तीन विभाजन में चर्चा की थी, दुरुपयोग, कृत्रिम अवस्था और कृत्रिम उपयोग और सदुपयोग। तो अभी क्रोध के लिए इसका उदाहरण तीनों के सदुपयोग। तो क्रोध का सदुपयोग किसके लिए होता है? या भक्त या कृष्ण को कुछ भला बुरा बोलता है या बुरा व्यवहार करता है, तब उसके प्रति हमें क्रोध प्रकट करना चाहिए। तो ये क्रोध का सदुपयोग है। फिर वो क्रोध का सदुपयोग है, दुरुपयोग है। अपने लिए कुछ क्रोध करना वो दुरुपयोग है क्रोध का। वैष्णवों के लिए, कृष्ण के लिए क्रोधित होना, जब उनका कोई अपमान कर रहा है तो ये सदुपयोग है। और कृत्रिम अवस्था बस यही क्रोध को रोक लेना। क्रोध को रोका नहीं जा सकता। पहले ही वाक्य क्या है इस परिच्छेद में? नहीं, उसके बाद पूरी तरह, हाँ, पूरी तरह से क्रोध करना बंद नहीं कर सकते। जैसे हम पूरी तरह से सोचना बंद नहीं कर सकते, पूरी तरह से बोलना बंद नहीं कर सकते, उसी प्रकार से पूरी तरह से क्रोध करना भी नहीं बंद कर सकते। तो केवल क्रोध को बंद करके रखना ये भी कृत्रिम अवस्था है। ठीक है, और कौन समझाएंगे अभी? नीलेश, बताओ। सदुपयोग, दुरुपयोग और कृत्रिम अवस्था, कृत्रिम उपयोग। ये कृत्रिम अवस्था है। बहुत अच्छा। समझाने क्या बोले? कृत्रिम अवस्था क्या है? मतलब क्रोध को रोक लेना, ये कृत्रिम अवस्था है। जैसे वाणी के लिए कृत्रिम अवस्था क्या है? मौन व्रत। मन के वेग के लिए कृत्रिम अवस्था क्या है? मन के वेग को ही बस रोक लेना, सोचना ही नहीं, विचार नहीं करना। उसी प्रकार से क्रोध का कृत्रिम अवस्था क्या है? क्रोध को रोक लेना हमेशा के लिए। लेकिन दूसरे ही वाक्य में क्या कहते हैं प्रभुपाद? वो दूसरा वाक्य पढ़ो इसी परिच्छेद में। क्रोध करना पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते, है ना? तो जब हम केवल पूरी तरह से बंद कर दें तो वो कृत्रिम अवस्था हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अभी सदुपयोग के कौन से उदाहरण दिए हैं श्री गोकुलानंद प्रभु? सबसे पहले कौन सा उदाहरण दिया था? पढ़ के बोलो। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने जगाई और मधाई के ऊपर क्रोध किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किया था। तो ये पहला उदाहरण है क्रोध का, क्रोध के सदुपयोग का। क्रोध के सदुपयोग का दूसरा उदाहरण अर्जुन का अंत में, तीसरा हनुमान। हनुमान का उदाहरण क्या है? क्यों क्रोधित हुए हनुमान जी? अपने लिए क्रोधित हुए कि वो पूंछ जला दिया इसलिए? फिर क्योंकि रावण ने सीता का भरण कर दिया था। तो ये दूसरा उदाहरण है क्रोध के सदुपयोग का। तीसरा उदाहरण भद्रसेन प्रभु, अर्जुन का क्या उदाहरण? तो उन्होंने फिर अपने आप के लिए क्रोध किया ना, कहने पर। तो भगवान को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने क्रोध किया है। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अर्जुन ने क्रोध किया? क्या प्रमाण है इसका? क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी? हाँ, बिना क्रोध के युद्ध नहीं हो सकता। हालांकि भगवत गीता में वर्णन नहीं है कि अर्जुन ने क्रोध किया, परंतु महाभारत में वर्णन है। जब युद्ध चल रहा होता है, और ये स्वाभाविक भी है, कोई भी बिना क्रोध किए हुए युद्ध कर सकता है? कई बार आपने देखा होगा लोग झगड़ते हैं आपस में, भला बुरा एक दूसरे को बोलते हैं, कभी एक दूसरे के ऊपर प्रहार भी करते हैं, आपने देखा भी होगा। तो कैसे करते हैं? गुस्सा होकर करते हैं ना। तो किसी को युद्ध करना है तो हसमुख होकर नहीं कर सकता है ना? अरे वो मैं भी तीर छोड़ने वाला हूँ आपके, चलो, है ना? हरी बोल, बहुत अच्छा तीर मारा, मैं भी छोड़ूंगा, अच्छा हरी बोल, है ना? ऐसे कर सकते हैं? क्षेत्रीय पद्धति ये थी को एक दूसरे को ललकारते रहते थे। हम भागवत में भी पढ़ते हैं ना, पौंड्रक के सामने जब कृष्ण आते हैं तो एक दूसरे को दोनों ललकारते हैं। ललकारने का क्या कारण होता है? गुस्सा उकसाने के लिए। क्योंकि गुस्सा आएगा तब आदमी युद्ध कर पाएगा, है ना? इसलिए क्षत्रियों की पद्धति होती थी एक दूसरे को ललकारने के लिए, वो प्रेरित करने के लिए ललकारते थे, अपमानित करते थे। अब लगता है कि तुम मृत्यु के मुंह में ही जाना चाहते हो, तुमने व्रत लिया है मृत्यु पाने के लिए ना, इसलिए आए हो मेरे सामने। वो बोलेगा हाँ, मृत्यु के द्वार में कौन खड़ा है अभी देखते हैं, ऐसे बातचीत करते हैं। तो एक दूसरे की का क्रोध बढ़ाते रहते हैं। तो अर्जुन ने बहुत क्रोध किया, परंतु कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया, इसलिए ये क्रोध का सदुपयोग है। अच्छा, अभी आप थोड़े उदाहरण बताइए कि क्रोध का दुरुपयोग सदुपयोग कब, जैसे आश्रम में कभी हुआ होगा, कैसे? कोई अपने अनुभव से कुछ बताइए अपने जीवन में। आपने जब सदुपयोग, कभी दुरुपयोग, कभी कृत्रिम, सीधर कभी गुस्सा नहीं हुआ आश्रम में? कौन कभी गुस्सा नहीं हुआ आश्रम में? हाथ ऊपर करो। तो सब हुए है ना गुस्सा कभी न कभी, तो है कि नहीं? तो अपने उदाहरण से आप बताओ। राममूर्ति तुम हाँ, और कौन? हाँ, गुस्सा आ जाता है। तो ये क्रोध का दुरुपयोग है, सदुपयोग है, क्या है? दुरुपयोग है ना। क्यों दुरुपयोग है? یہ غصہ دروپیوگ ہے، ارتھات یہ غصہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہمیں اپنے جیون میں آتم پریکشن کرنا چاہیے. جب بھی یہاں بھی جو بھی چرچا ہو رہی ہے نا، ہمارے جیون میں بھی اپنے کو ان کو اتارنے کا پریاس کرنا چاہیے. بھکت کو ایسے ایماندار اپنے آپ سے ہونا چاہیے کہ جب وہ کوئی کرتا ہے کار تو اپنی پریکشا کر کے میں نے کیا تو ٹھیک کیا کہ نہیں کیا، میری یہ منوورتی ٹھیک تھی کہ نہیں تھی، مجھے اس سے میں غصہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے میں نے ایسے شبد بولے ایسے بولنا اچت تھا نہیں تھا. ایسا نہیں کہ بہت زیادہ چنتن کرنا ہے اس کے اوپر، پرنتو من میں نوٹ کر کے رکھنا نہیں ہے ٹھیک نہیں تھا، اگلی بار ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہے نا، ایسے بھکت کو سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یدی آپ ابھی اس سمے آپ کے کروھ کا سدوپیوگ کے لیے ہم موقع نہیں دیں گے کیونکہ پرساد کا سمے ہو گیا نا، تو ابھی آپ غصے ہو جائیں گے تو کروھ کا دروپیوگ ہو گیا سدوپیوگ ہو گیا، یہ سدوپیوگ. ٹھیک ہے کہ ہم روک رہے ہیں آپ کو پرساد کے لیے، یہ بھی سیوا ہے. تو ٹھیک ہے یہیں پہ روک دیتے ہیں. کیا سمے ہوا ابھی؟ 3 بجنے کو آئے. ٹھیک ہے، ہاں ہاں چارج ذرا کھول دو نا. کروھ کا نینترن، بھگوان و بھکتوں کی نندا کرنے والے پر کروھ کا پریوگ. شری چیتنیہ مہاپربھو نے جگائی اور مدھائی، ہنومان نے لنکا اور ارجن نے کروکشیتر میں. نیلیش جب چارٹ کریں گے نا اس کا تھوڑا پریورتن کریں گے تو یہ سدوپیوگ، دروپیوگ اور کرتم اپیوگ، ان تینوں کے حساب سے سارے ویگوں کا کر لینا بات. ٹھیک ہے، جب چارٹ کرو گے تو اس میں لکھ لینا. اس درشٹی کون سے اس کا وشلیشن کریں گے. ٹھیک ہے، جگت میں جو کروھ کو انرتھ کہتے ہیں وہ جب کروھ کا دروپیوگ ہوتا ہے تب اس کو انرتھ کہتے ہیں. وہ بھگوان کی سیوا کے لیے ہے، اس اوستھا میں جب بھی کروھ کرتے ہیں تو وہ کروھ ٹھیک ہے. प्रेम पे अवस्था में ऐसे भी है, मान राधा रानी गुस्सा करती है कृष्ण के ऊपर, ऐसा हम नहीं कर सकते कृष्ण के ऊपर, वो अलग है. गोपियां कभी या ग्वाल बाल गुस्सा करते हैं, एक ग्वाल बाल दूसरे मधुमंगल दूसरे के ऊपर गुस्सा हो जाता है, तुमने मेरा लड्डू चोरी कर लिया. वो लीला की अवस्था में है. वो लीला का क्रोध वो प्रेम का ही रूप है, सबसे ऊंचे ज्ञान का स्वरूप है. परंतु यहां जो क्रोध का दुरुपयोग होता है भौतिक जगत में वो अज्ञान का स्वरूप है. ठीक है, जैसे श्रीवास ठाकुर ने चंदन हरिचंदन को थप्पड़ मारा ना रथ यात्रा के समय, है कि नहीं? तो वो क्या है, वो कैसा क्रोध है, क्या कह सकते हैं इस क्रोध के बारे में? हाँ, कृपा, क्योंकि सही है कृपा है. तो हम भी किसी को थप्पड़ पाने को कृपा हो जाएगा? नहीं होगा. क्यों? श्रीवास ठाकुर कौन है? वो तो भगवान के पार्षद हैं। उनके स्तर में जो कार्य होते हैं वो सभी कार्य होते हैं, वो लीला होते हैं। हम लोग तो बद्ध अवस्था के जीव हैं, तो ये सारी जो चर्चा चल रही है ये बद्ध अवस्था में के लिए चल रही है ना। जिन्होंने मन को वश में नहीं किया है उनके लिए है ना ये सब। ये सारे उपदेश श्रीवास ठाकुर के लिए नहीं है, राधा रानी के लिए नहीं है, मधुमंगल के लिए नहीं है, हाँ? ठीक है, हाँ? हाँ। नहीं, नकल नहीं करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद भी कभी बार क्रोध करते थे, कोई वैज्ञानिक आता था रास्कल बोल देते थे मुंह पे, हम बोलेंगे तो नहीं चलेगा। प्रभुपाद ने जो किया उनके स्तर के लिए ठीक है। जैसे भक्त बता रहे थे कि एक माताजी थी जो प्रभुपाद के समय अमेरिका में एयरपोर्ट में जाके पुस्तक वितरण करते थे। उस समय तो बहुत उत्साह से लोग पुस्तक वितरण करते थे। तो ये माताजी हवाई अड्डे पर गई, एक व्यक्ति ने कुछ इनकार किया पुस्तक लेने से, तो माताजी ने कहा तुम रास्कल हो। तो व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया उसको, वो माताजी को। तो ऐसे हम लोग नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी कहते थे गुस्सा होके और आजकल कहके कह देते थे, इसलिए हम लोग नकल नहीं कर सकते। तो हमें जो भगवान के लिए भी हम क्रोध करते हैं तो परिस्थिति के अनुसार अपने हमें करना चाहिए, उसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि कब कितना गुस्सा करना चाहिए, क्या हम इस पात्र हैं, क्या योग्य हैं इतना करने के लिए, हा? तो हमें ये सोच समझ के करना चाहिए, बुद्धि के प्रयोग करके करना चाहिए। हाँ, प्रचार के लिए अंततः क्रोध हमारे वश में होना चाहिए, न कि हम क्रोध के वश में हों। ये महत्वपूर्ण बात है। यदि हम क्रोध के वश में आ जाएं, तो फिर वो भगवान की सेवा के लिए कब होता है, कब हमारे अहंकार के लिए होता है समझ में नहीं आता। इसलिए हमें क्रोध को एक यंत्र के समान, एक निमित्त, उसको एक जैसे एक कामगार होता है वो अपने साधन को का इस्तेमाल करता है, वैसे क्रोध को इस्तेमाल करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। कब इस्तेमाल करना चाहिए, कितना इस्तेमाल करना चाहिए, उसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। हा? लेकिन आमतौर से देखा जाता है कि बाहर की दुनिया में क्रोध का प्रयोग ज्यादा करने से लोग साधुओं के बारे में गलत सोचते हैं कि अरे इतना साधु कैसे गुस्सा कर रहा है, तो ये अच्छा प्रचार नहीं होता है। इसलिए आमतौर से देखा जाता है कि हमें क्रोध को वश में ही करना अच्छा है हमारे लिए। और उस क्रोध की भी सीमा होनी चाहिए, जैसे जिस तरह से हम लोग रह रहे हैं। और जैसे आपने बताया तीनों उदाहरण क्रोध के किनके हैं, एक तो स्वयं भगवान का है और दूसरे दो उदाहरण भगवान के पार्षदों का है। परंतु ये सिद्धांत ठीक है, इसको केवल अपने मर्यादा के अनुसार, अपने स्थिति के अनुसार इसको प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। अंततः जो प्रचार के लिए अच्छा है वो करना चाहिए, जो अन्यों को कृष्ण भक्ति में लाने के लिए लाभदायक होगा वैसे हमें करना चाहिए। हाँ? ओपनली हाँ, प्रभुपाद जी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। भले कई लोग आए कई लोग जाएं, हो सकता है कई लोग ज्यादा आकर्षित होकर रह भी गए हों, हमने देखा है कई भक्त होते हैं जिनका स्वभाव थोड़ा आग के समान होता है। जैसे बॉम्बे में हमारे गृहस्थ भक्त हैं महाप्रभु, बड़े धुआंधार प्रवचन देते हैं, है ना। और कई बार लोग सोचते हैं ये तो बहुत कड़क बोलते हैं, इतना कड़क उनको अच्छा नहीं लगता, वो चले जाते हैं। लेकिन थोड़े भक्त होते हैं, थोड़े लोग होते हैं बहुत आकर्षित हो जाते हैं, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। तो किसको क्या मन में क्लिक होता है वो कहना मुश्किल है। तो थोड़े लोग उठ के चले गए प्रभुपाद को सुनकर, थोड़े लोग बैठ गए, ज्यादा आकर्षित हो गए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, गौर प्रेमानंदे।